दानियल की पुस्तक एक संख्या 136 गणतंत्रवाद और प्रोटेस्टेंटवाद का भविष्य सूचक परिवर्तन मृत्यु से पुनरुत्थान तक
पृथ्वी से उठने वाले पशु के रिपब्लिकन और सच्चे प्रोटेस्टेंट दोनों सींगों में एक परिवर्तन 2020 में शुरू हुआ। सच्चा प्रोटेस्टेंट सींग 18 जुलाई 2020 को मारा गया और रिपब्लिकन सींग 3 नवंबर 2020 को मारा गया। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 11 के अनुसार 3.5 प्रतीकात्मक दिनों के बाद वे फिर से अपने पैरों पर खड़े होंगे। जब वे खड़े होंगे तो सच्चा प्रोटेस्टेंट सिंह लाओदीकियाई अवस्था से फिलाडेल्फियाई अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। उन्हें एक कलीसिया से निकालकर एक आंदोलन में लाया जा चुका होगा। उन्हें 7वीं कलीसिया के अनुभव से निकालकर 6ठी कलीसिया के अनुभव में लाया गया है। वे 8वां बन गए हैं जो 7ों में से है।
एडवेंटिज्म की शुरुआत में जो आंदोलन था वो फिलाडेल्फियाई आंदोलन था और अंत में फिलाडेल्फियाई आंदोलन ही पुनर्स्थापित होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के 3 स्वर्गदूतों का कार्य एक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ और एक आंदोलन के रूप में ही समाप्त होगा। 6ठी कलीसिया फिलाडेल्फिया द्वारा प्रतिनिधित्वित फिलाडेल्फियाई आंदोलन 2856 में समाप्त हो गया और जुलाई 2023 के अंत से ये अब 8वें के रूप में, जो कि 7 में से है, पुनर्जीवित किया जा रहा है।
उसी इतिहास में रिपब्लिकन सींग एक समानांतर मृत्यु और पुनरुत्थान का अनुभव कर रहा है, जिसमें 1989 में अंत के समय पर रीगन के बाद से 6ठा राष्ट्रपति 8वां राष्ट्रपति बन जाता है, जो 7 में से है। रिपब्लिकन सींग के परिवर्तन की प्रक्रिया उसके धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट वाद के सींग के साथ विलय द्वारा दर्शाई गई है, जो आध्यात्मिक व्यभिचार और पशु की प्रतिमा है। रिपब्लिकन सींग 8वां बन जाता है, जो 7 में से है, क्योंकि वो कैथोलिक वाद के पशु की प्रतिमा का प्रतिनिधित्व करता है, जो 8वां सिर है, जो 7 सिरों में से है। प्रकाशित वाक्तिक अध्याय 17 में और दानियेल अध्याय 2 में
गणतंत्रवाद के सींग का राजनीतिक परिवर्तन 1776 से 1798 तक की तैयारी की अवधि में दर्शाया गया है। वो भविष्य सूचक काल नबूकदनेक के पशुओं की प्रतिमा के छिपे हुए रहस्य की मुहर के खुलने को पहचानने की एक आवश्यक कुंजी है। तैयारी की वो अवधि मसीही और विरोधी मसीही दोनों के लिए 30 वर्षों की तैयारी की अवधि द्वारा दर्शाई गई है।
11 सितंबर 2001 से लेकर शीघ्र आने वाले रविवार के कानून तक का मुहरबंदी का समय वो भविष्यवाणी का काल है, जिसमें प्रत्येक दर्शन का प्रभाव सिद्ध होता है। ये उस काल को दर्शाता है जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के महान भूकंप की घड़ी पर पापाई सत्ता के पृथ्वी के सिंहासन पर 8वें राज्य के रूप में, जो कि 7 में से है, लौट आने के साथ समाप्त होता है। इसलिए इसका प्रतिरूप उस काल में मिलता है जो 583 में पहली बार पापाई सत्ता के सिंहासनारूढ़ होने से पहले था। 583 में ऑर्लियों की परिषद में पापाई सत्ता ने एक रविवार का कानून पारित किया, जिसने तैयारी के 30 वर्षों के अंत को चिह्नित किया और शीघ्र आने वाले रविवार के कानून का प्रतिरूप प्रस्तुत किया। यीशु कभी नहीं बदलते, इसलिए रविवार के कानून से पहले ऐसा एक काल अवश्य होगा जब वो घातक घाव चंगा होगा, जैसा कि तब था जब पापाई सत्ता पहली बार सिंहासन पर बैठाई गई थी।
उस अवधि का प्रतिनिधित्व सन 508, 530 और 530 के मार्ग चिह्नों से संबद्ध इतिहासों द्वारा होता है। सन 507 में तैयारी की अवधि अर्थात पापसी की स्थापना प्रारंभ हुई। मूर्ति पूजक रोम का 4था राज्य, जो एक अजगर शक्ति था, परास्त कर दिया गया था और 530 एनियन ने ये आदेश दिया कि पापसी कलीसियाओं का प्रधान और विधर्मियों का सुधारक है। 530 में पापसी के नियंत्रण ग्रहण करने के लिए जो बात शेष थी वह रोम नगर से गोथों का हटाया जाना था और वो कार्य सन 503 में ही संपन्न हुआ। इतिहास की वो 30 वर्षों की समय रेखा मसीह के जन्म के समानांतर चली। उसके बाद यूहन्ना की सेवकाई हुई, जो उनके बपतिस्मा के समय यीशु को मसीह के रूप में सशक्त किए जाने तक ले गई।
मसीह के इतिहास में तैयारी का काल सील किए जाने के समय के समानांतर चलता है और वो प्रोटेस्टेंट सीन की आंतरिक रेखा को संबोधित करता है, जबकि ख्रीस्त विरोधी के लिए तैयारी का काल रिपब्लिकन सीन की बाह्य रेखा को संबोधित करता है। ये दो काल 11 सितंबर 2001, 7 अक्टूबर 2023 और शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के दो गवाह प्रदान करते हैं, एक काल बाही गवाही पर और दूसरा काल 144,000 के सील किए जाने के समय की आंतरिक गवाही पर बल देता है।
जॉन का कार्य जंगल में पुकारने वाले की आवाज के रूप में, जिसने वाचा के दूत के लिए मार्ग तैयार किया, जस्टिनियन के उस फरमान के समानांतर था जिसने पाप के मनुष्य के लिए मार्ग तैयार किया जो मृत्यु की वाचा का दूत है। 7 अक्टूबर 2023 ये चेतावनी थी कि जब रविवार का कानून लागू किया जाएगा, जैसा कि 538 में हुआ था, तब क्या होने वाला है। 7 अक्टूबर 2023 उस तैयारी काल में 533 के समानांतर है जब पहली बार पापाई सत्ता को पृथ्वी के सिंहासन पर बैठाया गया था। ये चेतावनी है कि शीघ्र आने वाले रविवार कानून के समय 538 की तरह पोप फिर से कलीसियाओं का मुखिया और विधर्मियों का सुधारक दोनों बन जाएगा। ये तीसरी विपत्ति के दौरान इस्लाम के बढ़ते हुए युद्ध की भी चेतावनी है। ये इस्लाम की पहचान बताने वाली चेतावनी है, पूर्व की खबरें, और पोप की पुनर्स्थापना की चेतावनी है, उत्तर की खबरें। ये चेतावनी अंतिम दिनों में उस दूत के कार्य के साथ मेल खाती है जो वाचा के दूत के लिए मार्ग तैयार करता है, और वाचा का दूत तब 144,000 के साथ वाचा करेगा। तैयारी के तीन काल, मसीह और विरोधी मसीह के 30-30 वर्ष तथा मुहर लगाए जाने का समय का प्रतिरूप 1776 से 1798 का काल भी है। पृथ्वी के पशु के समापन के साथ एक विशिष्ट काल जुड़ा है जो बाइबलीय भविष्यवाणी के छठे राज्य के रूप में उसके अंत से पहले आता है। इसलिए बाइबलीय भविष्यवाणी के छठे राज्य के रूप में पृथ्वी के पशु की अंत से पूर्व भी एक भविष्य सूचक काल होना चाहिए। अल्फा और ओमेगा सदा किसी बात के अंत को उसकी शुरुआत के साथ दर्शाता है। समस्याएं 3, समस्याई 5 लक्षणों और समस्याई एट मिनायक अवर सितंबर 2001, 7 अक्टूबर 2023 और शीघ्र आने वाले रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करते हैं। समस्यायन 3 से समस्याई एट नैतक छठे राज्य की स्थापना की भविष्य सूचक तैयारी पूरी हुई, जिस प्रकार 508 500 पति और 500 तही की प्रतिनिधित्व करते थे। उनमें वही भविष्य सूचक विशेषताएं होनी चाहिए क्योंकि छठा राज्य पांचवें राज्य की छवि होने वाला है।
मसीह की तैयारी के वे 30 वर्ष जो उनके बपतिस्मा तक ले गए, उसी अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि जब मसीह अपने बपतिस्मा से आरंभ होकर एक सप्ताह के लिए वाचा दर्शन तश की पुष्टि करने आए, तब वे अपने अनुग्रह का राज्य स्थापित कर रहे थे। उन 7 वर्षों में अपना अनुग्रह का राज्य स्थापित करते समय उन्होंने उस राज्य की पुष्टि के लिए अपना लहू बहाया, और ऐसा करते हुए उन्होंने ये उदाहरण छोड़ दिया कि वे कब अपना महिमा का राज्य स्थापित करेंगे। वो महिमा का राज्य दानियल 2 का राज्य है, जिसे बिना हाथों के पहाड़ से निकले हुए पत्थर के रूप में दर्शाया गया है। सिस्टर व्हाइट हमें बताती हैं कि वो राज्य अंतिम वर्षा के दौरान स्थापित होता है, और अंतिम वर्षा 11 सितंबर 2001 को आरंभ हुई।
पिछली वर्षा उन पर आ रही है जो शुद्ध है, तब सब उसे पूर्वकाल की भांति प्राप्त करेंगे। जब चारों स्वर्गदूत छोड़ देंगे, तब मसीह अपना राज्य स्थापित करेंगे। कोई भी पिछली वर्षा को प्राप्त नहीं करता, सिवाय उनके जो अपनी सामर्थ्य भर सब कुछ कर रहे हैं। मसीह हमारी सहायता करेंगे। परमेश्वर की कृपा से यीशु के लहू के द्वारा सब विजेता हो सकते हैं। सारा स्वर्ग इस कार्य में रुचि रखता है, स्वर्गदूत रुचि रखते हैं। स्पॉल्डिंग एंड मेगान 3।
11 सितंबर 2008 को 4 पवने, जिन्हें एक क्रोधित घोड़े इस्लाम के रूप में दर्शाया गया है, मुक्त कर दी गई और फिर उन्हें रोक लिया गया, जबकि 144,000 को मुहरबंद किया जा रहा है। 1786, 1789 और 1799 144,000 की मुहरबंदी की अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये तीनों तिथियां ऐसे कानूनी अधिनियमों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनके परिणाम स्वरूप बाइबल की भविष्यवाणी के छठे राज्य की स्थापना हुई। दूसरी तिथि 1789 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को इंगित करती है। अतः ये वो संदेश था
जिसने संविधान को उस दोहरी शक्ति के रूप में चिन्हित किया जो 1799 में आने वाली थी। जैसे 533 वो वर्ष था जब 533 में आने वाली दोहरी शक्ति की घोषणा हुई, और जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस दोहरी शक्ति की घोषणा की जो मसीह के बपतिस्मा के समय आने वाली थी।
मसीह की दोहरी शक्ति को बनाने वाली दो शक्तियां थीं। मसीह का ये उदाहरण कि दिव्यता मानवता के साथ संयुक्त होकर पाप नहीं करती। मसीह विरोधी की दोहरी शक्ति को बनाने वाली दो शक्तियां थीं, कलीसियाओं के मुखिया के रूप में उसका सिंहासनारोहण और विधर्मियों के सुधारक के रूप में उसका सिंहासनारोहण। पृथ्वी के पशु की दोहरी शक्ति को बनाने वाली दो शक्तियां हैं गणतंत्रवाद और प्रोटेस्टेंटवाद के दो सींग।
और उसके मेमने के समान दो सींग थे। मेमने जैसे सींग युवावस्था, निष्कपटता और कोमलता का संकेत देते हैं, और 1798 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका को भविष्यद्वक्ता के समक्ष उदित होता हुआ दिखाया गया तब वे उसके चरित्र का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं जो मसीही निर्वासित सबसे पहले अमेरिका भागे और राजकीय उत्पीड़न तथा पादरीय असहिष्णुता से शरण चाहते थे। उनमें से बहुतों ने ये निश्चय किया कि वे नागरिक और धार्मिक स्वतंत्रता की व्यापक नींव पर एक शासन स्थापित करेंगे। उनके विचार स्वतंत्रता की घोषणा में स्थान पाए जो इस महान सत्य की उद्घोषणा करती है कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं और उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज के अविच्छेद्य अधिकार प्रदान किए गए हैं, और संविधान जनता को स्वशासन का अधिकार सुनिश्चित करता है। ये प्रावधान करते हुए कि लोकमत से चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाएंगे और उनका प्रशासन करेंगे। धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर की उपासना करने की अनुमति मिली। गणतंत्रवाद और प्रोटेस्टेंटवाद राष्ट्र के मौलिक सिद्धांत बन गए। ये सिद्धांत उसकी शक्ति और समृद्धि का रहस्य हैं। समूचे मसीही जगत के पीड़ित और पिसे कुचले लोगों ने आशा और रुचि के साथ इस देश की ओर रुख किया है। लाखों ने उसके तटों की ओर रुख किया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में अपना एक स्थान प्राप्त कर चुका है। महान विवाद 4709
1776, 1785 और 1798 तीन इतिहासों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस बात पर बल देते हैं कि आठवां उन्हीं सातों में से है। 1776 स्वतंत्रता की घोषणा के प्रकाशन और प्रथम और द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेसों के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। 1789 संविधान के प्रकाशन और परिसंघ का के अनुच्छेदों के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। 1789 विदेशी और देशद्रोह अधिनियमों के प्रकाशन का और बाइबल की भविष्यवाणी में छठे राज्य के रूप में पृथ्वी के पशु की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस 1744 में हुई, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रारंभिक इतिहास में एक निर्णायक संस्था थी जिसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शासकीय निकाय के रूप में कार्य किया। महाद्वीपीय कांग्रेसों को पहली कांग्रेस और अंतिम कांग्रेस की दो भविष्य सूचक अवधियों में विभाजित किया जाता है। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के दो अध्यक्ष थे, और ये 5 सितंबर से 26 अक्टूबर 1744 तक फिलाडेल्फिया में आयोजित हुई। 5 सितंबर से 22 अक्टूबर तक पेटन रैंडोल्फ बैठक के प्रथम अध्यक्ष थे, और फिर 26 अक्टूबर 1744 तक अगले 5 दिनों के लिए हेनरी मिडलटन ने अध्यक्षता की।
द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस संसालंग 75 से संसालंग 21 तक चली। अपने अस्तित्व के दौरान उसके 6 अध्यक्ष रहे। 10 मई संसालंग 75 से 24 मई संसालंग 75 तक पेटन रैंडोल्फ अध्यक्ष रहे। वो प्रथम और द्वितीय दोनों महाद्वीपीय कांग्रेसों के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम और द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेसों के इतिहास में कुल 8 अध्यक्ष हुए।
द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष जॉन हैनकॉक थे, और हैनकॉक ने 24 मई 1775 से 21 अक्टूबर 1777 तक अध्यक्षता की। हेनरी लॉरेंस ने 1 नवंबर 1777 से 9 दिसंबर 1778 तक अध्यक्षता की। जॉन जे ने 10 दिसंबर 1778 से 28 सितंबर 1779 तक अध्यक्षता की। सैमुअल हंटिंगटन ने
28 सितंबर 1779 ने से 9 जुलाई 1751 तक अध्यक्षता की। थॉमस मैककीन ने 10 जुलाई 1751 से 4 नवंबर 1751 तक अध्यक्षता की।
पेटन रैंडॉल्फ पहली और दूसरी दोनों महाद्वीपीय कांग्रेसों के प्रथम अध्यक्ष थे। इससे स्पष्ट होता है कि महाद्वीपीय कांग्रेस की 2 अवधियों में 8 अध्यक्ष थे, लेकिन दोनों अवधियों के प्रथम अध्यक्ष एक ही व्यक्ति था। इसलिए यद्यपि अध्यक्षीय पद के 8 कार्यकाल थे, वास्तव में केवल 7 अध्यक्ष थे। पहला अध्यक्ष उन 7 पुरुषों में से एक था जो अध्यक्ष बने, लेकिन क्योंकि रैंडॉल्फ ने उस इतिहास में 2 बार अध्यक्षता की, वे 8वें कार्यकाल का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात 8वां कार्यकाल भी उन्हीं 7 में ही गिना जाता है।
कॉन्टिनेंटल कांग्रेसों के इतिहास में क्रांतिकारी युद्ध का संचालन कांग्रेस द्वारा किया गया था। इसी कारण उस अवधि में जॉर्ज वाशिंगटन कभी राष्ट्रपति नहीं थे, क्योंकि उन्हें सेना का प्रथम सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया था। दोनों अवधियों के पहले राष्ट्रपति होने के नाते रैंडॉल्फ 2 गवाहों का प्रतिनिधित्व करता है, जो पहले वास्तविक राष्ट्रपति जो जॉर्ज वाशिंगटन थे का प्रतिरूप है। वाशिंगटन का प्रतिनिधित्व रैंडॉल्फ द्वारा किया जाता है, और इसलिए वाशिंगटन के प्रतीक के रूप में रैंडॉल्फ न केवल पहले राष्ट्रपति रैंडॉल्फ की भविष्य सूचक विशेषताओं को संप्रेषित करता है, बल्कि ये भी कि रैंडॉल्फ 8वां था जो 7 में से था। इस प्रकार जॉर्ज वाशिंगटन पहले राष्ट्रपति और पहले कमांडर और चीफ के रूप में भविष्य सूचक रूप से 8वां भी था और 7 में से था।
यीशु किसी बात का अंत उसकी शुरुआत से दिखाते हैं, इसलिए अंतिम राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ 8वां होगा जो 7 में से है। ये भविष्य सूचक तथ्य प्रथम और द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेसों के इतिहास में स्थापित है, जिसका प्रतिनिधित्व 1776 के पहले संकेत चिन्ह की तारीख और स्वतंत्रता की घोषणा के प्रकाशन द्वारा होता है। 1737 का मार्ग चिन्ह 11 सितंबर 2001 और पैट्रियट एक्ट का प्रतीक है, जहां अमेरिकी स्वतंत्रता को रोमन कानून के प्राधिकार के अधीन कर दिया गया और वो अब अंग्रेजी कानून के अधीन नहीं रही। ये उस भविष्य सूचक काल की शुरुआत को चिह्नित करता है जो शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय पोप सत्ता को एक बार फिर पृथ्वी के सिंहासन पर बैठने का मार्ग तैयार करता है।
1776 द्वारा निरूपित भविष्यवाणी काल की तरह 1781 में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के समापन से 1795 तक का भविष्यवाणी काल उस इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। 1795 वह तिथि है जो संविधान के प्रकाशन से जुड़े मील के पत्थर की पहचान करती है। उस इतिहास में भी 8 राष्ट्रपति थे। 1785 to 1795 तक का इतिहास परिसंघ के अनुच्छेदों का इतिहास है। परिसंघ के अनुच्छेद प्रथम संविधान का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन उनकी कमजोरियों के कारण उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया गया और 1785 में संविधान का अनुमोदन हुआ। उस अवधि के 8 राष्ट्रपतियों में 7वें थे जो दोनों महाद्वीपीय कांग्रेसों के दौरान राष्ट्रपति नहीं थे, और एक वो था जो उस प्रथम भविष्य सूचक काल में भी राष्ट्रपति था। जॉन हेकॉक ने दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस में भी सेवा की और उस काल में भी जो परिसंघ के अनुच्छेदों द्वारा अभिहित है। भविष्य सूचक स्तर पर 2 महाद्वीपीय कांग्रेसों के दौरान केवल 7 पुरुष राष्ट्रपति थे, अतः भविष्य सूचक रूप से जॉन हेकॉक परिसंघ के अनुच्छेदों के काल के 8 में से 1 था, लेकिन वो पिछले काल के उन 7 पुरुषों में से भी एक था, इसलिए वो 8वां था जो उन 7 में से था। दूसरे भविष्य सूचक काल जिसका प्रतिनिधित्व 70091 करता है में भी एक राष्ट्रपति हैंकॉक था जो 8वां था, लेकिन 7 में गिना जाता था, जैसा कि 1776 का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भविष्य सूचक काल में पेटन रैंडॉल्फ था। 70091 6 जनवरी 2021 के पेलोसी मुकदमों के साथ मेल खाता है और उनका प्रतिनिधित्व करता है।
प्रभु ने सियोन की दीवारों पर विश्वास योग्य प्रहरी नियुक्त किए हैं जो ऊंचे स्वर से पुकारें और न रुकें, अपनी आवाज नरसिंगा की तरह ऊंची करें और उसके लोगों को उनके अपराध तथा याकूब के घराने को उनके पाप बताएं। प्रभु ने सत्य के शत्रु को 4थी आज्ञा के सप्त के विरुद्ध एक दृढ़ प्रयास करने की अनुमति दी है। उसका उद्देश्य इसी माध्यम से उस प्रश्न के प्रति दृढ़ रुचि जगाना है जो अंतिम दिनों के लिए एक परीक्षा है। यह तीसरे स्वर्गदूत का संदेश सामर्थ्य के साथ प्रचारित होने का मार्ग खोलेगा। सत्य पर विश्वास करने वाला कोई भी अब मौन न रहे। अब किसी को भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। सब लोग अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख अपनी प्रार्थनाएं रखें इस प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा। यूहन्ना 14:13। अब समय संकटमय है। यदि ये देश, जो अपनी स्वतंत्रता का घमंड करता है, अपने संविधान में निहित प्रत्येक सिद्धांत को बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा है, धर्म की स्वतंत्रता को दबाने के लिए फरमान जारी कर रहा है और पोप संबंधी असत्य और भ्रम को लागू करने के लिए कदम उठा रहा है, तो परमेश्वर के लोगों को चाहिए कि वे विश्वास के साथ अपनी बिनतियां परम प्रधान के सम्मुख प्रस्तुत करें। जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में हर प्रकार का प्रोत्साहन है। व्यक्तिगत खतरे और क्लेश में पड़ने की संभावना निराशा का कारण न बने, बल्कि परमेश्वर के लोगों के उत्साह और आशाओं को और तेज कर दे, क्योंकि उनके संकट का समय वही अवसर है जब परमेश्वर अपनी शक्ति के और स्पष्ट प्रकटीकरण उन्हें प्रदान करता है। हमें अत्याचार और क्लेश की शांत प्रतीक्षा में बैठकर हाथ पर हाथ धरे नहीं रहना चाहिए। बुराई को टालने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हमारी संयुक्त पुकारें स्वर्ग तक उठें। प्रार्थना करो और काम करो और काम करो और प्रार्थना करो, परंतु कोई भी उतावली में कार्य न करे। जैसा पहले कभी नहीं सीखा, वैसा सीखो कि तुम्हें मन में दीन और नम्र होना है। तुम्हें किसी के विरुद्ध, चाहे व्यक्ति हो या कलीसियाएं, कटु आरोप नहीं लगाना चाहिए। जैसे मसीह ने लोगों के मनों के साथ व्यवहार किया, वैसा करना सीखो। कभी कभी तीखी बातें कहना आवश्यक होता है, लेकिन स्पष्ट और सीधी सपाट सच्चाई बोलने से पहले ये सुनिश्चित कर लो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में वास कर रहा है। तब उसे अपना रास्ता स्वयं काटने दो। काटना तुम्हारा काम नहीं है। चयनित संदेश, पुस्तक 2, 370।
संविधान द्वारा दर्शाई गई तैयारी की भविष्य सूचक अवधि का दूसरा मार्ग चिन्ह ये इंगित करता है कि अगले मार्ग चिन्ह पर संविधान उलट दिया जाएगा। उस दूसरे मार्ग चिन्ह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले द्वारा और जस्टिनियन के फरमान द्वारा भी पूर्व रूप में दर्शाया गया है। दोनों ने इस अवधि में दर्शाई गई अंतिम घटना के आगमन के संदर्भ में संकेत किया और चेतावनी दी। यूहन्ना के लिए वो मसीह का सशक्तिकरण था जब उन्होंने अपने अनमोल रक्त से जीवन की अपनी वाचा की पुष्टि की, और जस्टिनियन के लिए वो विरोधी मसीह का सशक्तिकरण था जो शहीदों के रक्त से अपनी मृत्यु की वाचा की पुष्टि करने वाला था।
1700 एथाइनों का संविधान पृथ्वी के पशु के दो सींगों के सशक्तिकरण को चिन्हित करता है, और ऐसा करते हुए 1793 ने पृथ्वी के उस पशु की शक्ति के दो सींगों के शीघ्र आने वाले विनाश को भी चिन्हित किया, जिसका प्रतिनिधित्व 1798 के एलियन और राजद्रोह अधिनियम करते हैं। जब वर्ष 2020 में दो गवाहों को सड़कों पर मार डाला गया, तो उन्होंने संविधान पर होने वाले एक सतत हमले की पहचान की और चेतावनी दी, जिसका प्रतीक 6 जनवरी 2021 के पेलोसी के मुकदमे है।
ज़िग जनवरी 2021 निकट आने वाले रविवार के कानून के समय पोपत तंत्र के सशक्तिकरण के बारे में एक चेतावनी है, जिसका प्रतिरूप वर्ष 533 में जस्टिनियन के अध्यादेश में मिलता है। ज़िग जनवरी 2021 और वर्ष 533 दोनों ही निकट आने वाले रविवार के कानून की चेतावनी देते हैं, जैसा कि 533 में ओर्लियों की परिषद में हुए रविवार के कानून और 1798 के एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स द्वारा प्रतिरूपित किया गया था, जिन्होंने निकट आने वाले रविवार के कानून के समय पृथ्वी के पशु के अजगर के समान बोलने का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था। जब रविवार का कानून लागू होगा, तब पोपाई सत्ता का घातक घाव भर जाएगा, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 का 8वां सिर, जो 7 सिरों में से है, पुनर्जीवित होगा। 1798 के एलियन और सेडिशन अधिनियम पृथ्वी के पशु के अजगर के समान बोलने को दर्शाते हैं, जब वो न केवल सूर्य की उपासना को लागू करता है, बल्कि उसके बाद पूरे संसार को प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 के समुद्र के पशु के अधिकार को 7 सिरों में से 8वें सिर के रूप में स्वीकार करने के लिए भी बाध्य करता है। इसलिए
तैयारी की अवधि के भीतर 1774, 195 और 1798 से अभिव्यक्त तीनों कालखंडों में सात में से आठवें की भविष्य सूचक पहेली का प्रतिनिधित्व होता है।
पहले दो मार्ग चिन्ह 87 तक्का और 87 उन्यासी जो रहस्य की पहचान कराते हैं, पृथ्वी के पशु के भविष्य सूचक इतिहास के भीतर संपन्न हो रही पहेली को संबोधित करते हैं, और तीसरा मार्ग चिन्ह उस रहस्य की पहचान कराता है जो पोप सत्ता के लिए संपन्न हो रहा है।
हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
पृथ्वी पर रहने वालों से ये कहा गया कि वे उस पशु की एक प्रतिमा बनाएं। यहाँ स्पष्ट रूप से ऐसी शासन व्यवस्था प्रस्तुत की गई है जिसमें विधायी शक्ति जनता में निहित होती है, जो इस बात का अत्यंत स्पष्ट प्रमाण है कि भविष्यवाणी में संकेतित राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका है। परंतु पशु की मूर्ति क्या है और वो किस प्रकार बनाई जानी है? वो मूर्ति दो सिंह वाले पशु द्वारा बनाई जाती है और वो पशु के लिए एक मूर्ति है। उसे पशु की मूर्ति भी कहा गया है। अतः ये जानने के लिए कि वो मूर्ति कैसी है और वो किस प्रकार बनाई जानी है, हमें स्वयं उस पशु अर्थात पोपतंत्र की विशेषताओं का अध्ययन करना होगा। जब प्रारंभिक कलीसिया सुसमाचार की सरलता से भटककर मूर्ति पूजक अनुष्ठानों और प्रथाओं को अपनाने लगी, तो उसने परमेश्वर की आत्मा और शक्ति खो दी, और लोगों के अंतकरणों को नियंत्रित करने के लिए उसने धर्मनिरपेक्ष सत्ता का समर्थन मांगा। परिणाम स्वरूप पाप उत्पन्न हुआ। ऐसी कलीसिया जिसने राज्य की शक्ति पर नियंत्रण कर लिया और उसे अपने विधर्म ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विशेषकर विधर्म के दंड हेतु प्रयुक्त किया। संयुक्त राज्य अमेरिका को पशु की प्रतिमा बनाने के लिए धार्मिक शक्ति को नागरिक सरकार पर इस प्रकार नियंत्रण करना होगा कि राज्य का अधिकार भी कलीसिया द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाए। जब जब कलीसिया को लौकिक सत्ता मिली है, उसने उसे अपने सिद्धांतों से असहमति को दंडित करने के लिए इस्तेमाल किया है। रोम के पदचिन्हों पर चलते हुए सांसारिक शक्तियों से गठजोड़ करने वाली प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं ने भी विवेक की स्वतंत्रता को सीमित करने की वैसी ही इच्छा प्रकट की है। इसका एक उदाहरण इंग्लैंड की कलीसिया द्वारा भिन्न मतवादियों पर लंबे समय तक किए गए उत्पीड़न में मिलता है। 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान हजारों भिन्न मतवादी पादरियों को अपनी कलीसियाओं से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, और पादरियों तथा आम लोगों दोनों में से बहुतों को जुर्माना, कारावास, यातना और शहादत तक का सामना करना पड़ा। धर्मत्याग ही वो कारण था जिसने प्रारंभिक कलीसिया को नागरिक सरकार की सहायता लेने के लिए प्रेरित किया, और इसने पोपशाही पशु के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। पौलुस ने कहा, वहां एक धर्मत्याग आएगा और पाप का मनुष्य प्रकट होगा। 2 थिस्सलुनीकियों 2:3। इसलिए कलीसिया में धर्मत्याग पशु की प्रतिमा के लिए मार्ग तैयार करेगा। बाइबल घोषित करती है कि प्रभु के आगमन से पहले धार्मिक अवनति की ऐसी अवस्था होगी जो प्रारंभिक शताब्दियों वाली अवस्था के समान होगी। अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आएंगे, क्योंकि लोग आत्मप्रेमी, लोभी, डींग मारने वाले, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, स्वाभाविक स्नेह से रहित, मेल न करने वाले, झूठे दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, जो भले लोगों से बैर रखते हैं, विश्वासघाती, उतावले, घमंडी, परमेश्वर से अधिक सुखों के प्रेमी होंगे। भक्ति का रूप तो होगा पर उसकी शक्ति का इनकार करेंगे। 2 तीमुथियुस 3:5। अब आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि आखिरी समयों में कुछ लोग विश्वास से भटक जाएंगे, बहकाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे। 1 तीमुथियुस 4:9। शैतान संपूर्ण सामर्थ्य और चिन्हों और झूठे अद्भुत कामों के साथ और अधर्म के हर प्रकार के धोखे के साथ काम करेगा, और जिन्होंने उद्धार पाने के लिए सत्य का प्रेम ग्रहण नहीं किया उन्हें बलवंत भ्रम स्वीकार करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ताकि वे झूठ पर विश्वास करें। 2 थिस्सलुनीकियों 2:9। जब ये अधर्म की अवस्था आ जाएगी तो वैसे ही परिणाम होंगे जैसे पहली शताब्दियों में हुए थे। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 4:53-4:44।